हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आईसीयू के मॉनिटर की बीप बीप धीरे धीरे अंबिका के कानों में गूंज रही थी। वेदांश ने हल्का सा करवट ली और उसकी पलकों में हलचल हुई। अंबिका ने जैसे अपनी सांसें रोक ली और अपनी जगह पर जम गई। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। वो कुछ सेकंड तक जैसे सपने में था, उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ पर है। फिर उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी अंबिका कर पड़ी और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे फिर से वो बस उसे इमेजिन कर रहा है। वेदांश के होश में आते ही अंबिका अंदर आना चाहती थी उससे मिलने, लेकिन पता नहीं क्यों उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। उसने पीछे खड़ी वेदांश की माँ की तरफ देखा और उन्हें आगे जाने का इशारा किया। अंबिका का इशारा समझते ही वेदांश की माँ अंदर आईं। उन्होंने वेदांश की तरफ शिकायत भरी नज़रों से देखा और उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। उससे थोड़ी देर बात करके वो बाहर निकल आईं। दरवाजे के पास खड़ी अंबिका, उसके दिल की धड़कनें तेज, कदम भारी थे, फिर भी उसने अंदर कदम रखा। वेदांश ने जैसे ही उसे देखा उसकी सांस अटक गई। तुम सच में यहाँ हो? मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ ना, प्लीज़ सच बताओ। अब तक वो उसका दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ चुका था। अंबिका ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं हूं मैं यहाँ, और क्यों रहूं यहाँ जब तुमने खुद ही मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। और कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी, जाओ त्रिशा के पास या बाकी जो भी लड़कियां हैं तुम्हारी जिंदगी में, मेरी क्या जरूरत है तुम्हें। इतना कहते हुए उसकी आवाज टूट गई। वो रोते हुए अपनी जगह से पीछे हटने लगी, लेकिन वेदांश ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और बेड पर लेटे हुए ही उसे अपने गले से लगा लिया। वेदांश ने काफी इमोशनल होते हुए धीरे से कहा, सॉरी, प्लीज आई एम सॉरी अंबिका, और मेरी लाइफ में कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, और जो कुछ भी मैंने उस दिन कहा वो सब गुस्से में कहा था। लेकिन तुम क्यों चली गई थी मुझे छोड़कर? क्या तुम उस दिन ही मुझसे लड़ नहीं सकती थी? क्यों चली गई थी उस तरह चुपचाप? तुम अगर आज भी नहीं आती तो शायद मैं मर। अंबिका ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप, आगे कुछ मत बोलना, मैं ऐसा कुछ भी सुनना नहीं चाहती, और फिर से उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों के आंसू एक दूसरे के कंधे पर गिरते रहे। उस पल में उनकी सारी गलतफहमियां और शिकायतें जैसे उनके आंसुओं से धुल गईं। दरवाजे के पास खड़ी माँ ने दोनों को देखकर दूर से ही उनकी नज़र उतारी और अपनी आंखों से बहते हुए आंसू पोछे और धीमी आवाज में कहा, बस इन दोनों को अब किसी की नज़र न लगे। इतना बोलकर वेदांश की माँ दरवाजे से मुड़कर वहाँ से बाहर चली गईं। वो दोनों अभी भी एक दूसरे के गले लगे हुए थे, लेकिन तभी अंबिका के हाथ अचानक ढीले पड़ गए। वो एकदम से वेदांश की बाहों में ढह गईं। अंबिका, वेदांश ने घबराकर उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे से रंग उड़ चुका था। अंबिका के हाथ अचानक ढीले पड़ गए, उसकी पलकों पर भारीपन छा गया और वो वेदांश की बाहों में ही बेहोश हो गई। वेदांश के हाथ में अभी भी ड्रिप लगी थी। उसका शरीर खुद बहुत कमज़ोर था, लेकिन अंबिका की हालत देखकर जैसे वो अपनी सारी तकलीफ भूल गया। अंबिका, उसकी आवाज़ कांप उठी। वो एक पल भी सोचे बिना अपने बेड से उठ खड़ा हुआ, अपने ही घावों की परवाह किए बिना उसे संभाल लिया। वेदांश ने अंबिका को धीरे से अपने बेड पर लिटाया और तेज़ आवाज़ में चिल्लाया, डॉक्टर, नर्स, कोई है बाहर? दरवाज़े के ठीक बाहर खड़ी एक नर्स फौरन भागकर अंदर आई और उसे देखते ही वेदांश ने बेचैनी से कहा, देखिए देखिए इसे, मेरी अंबिका को क्या हुआ, प्लीज़ कुछ कीजिए। उसकी आवाज़ में ऐसा डर था मानो उसकी दुनिया, उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ उससे छीनने वाली हो। नर्स के पीछे ही वेदांश की माँ भी वहाँ पर अंदर आ गई थीं, लेकिन अंबिका को ऐसे बेहोश होते देखकर वो भी काफ़ी परेशान हो गईं। कुछ ही सेकंड में डॉक्टर अंदर आए। उन्हें बाहर ले चलिए दूसरे वार्ड में, मैं चेक करता हूँ, डॉक्टर ने कहा। वेदांश ने तुरंत पलटकर कहा, नहीं, यहीं चेक कीजिए, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा उसे खुद से दूर। वेदांश को घबराते देखकर डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है, मैं यहीं पर चेक कर लेता हूँ, लेकिन आप भी लेट जाइए, आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है, अभी आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। डॉक्टर की बात सुनते ही वो खुद भी वहीं बेड पर साइड में लेट गया ताकि अंबिका को आराम से बेड पर जगह मिल सके। वीआईपी वार्ड का बेड बड़ा था, इसलिए उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और नर्स ने आईवी ड्रिप दोबारा से वेदांश के हाथ पर लगा दी। अभी वेदांश के लिए बस इतना मायने रखता था कि अंबिका उसके पास रहे। डॉक्टर ने अंबिका की जाँच शुरू की। कुछ पल बाद डॉक्टर के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर ठाकुर, आपकी पत्नी माँ बनने वाली हैं। वेदांश ये सुनते ही एक पल को स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखों में एक अलग चमक उभरी। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन इस बार डर से नहीं, खुशी से। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड अवंत को बुलाया। अवंत, सुनो, पूरे अस्पताल में, स्टाफ में, सिक्योरिटी गार्ड्स में, सबको मिठाई बांटो। मैं पापा बनने वाला हूँ। वो अपनी माँ की तरफ पलटा। माँ, सुना आपने? अंबिका माँ बनने वाली है। मैं पापा और आप दादी बनने वाली हो। उसकी आवाज़ में वो मासूम खुशी थी जो किसी बच्चे को अपनी सबसे प्यारी चीज़ मिल जाने पर होती है। वेदांश ने इधर उधर देखते हुए कहा, और मिशिका कहाँ है? प्लीज़ माँ, उसे भी बुलाइए। मैं ये गुड न्यूज़ सबको बताना चाहता हूँ और उसे अपने किए की माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरी बहन मुझे माफ़ कर देगी। उसने झुककर अंबिका के माथे पर किस कर लिया। कुछ देर बाद अंबिका की पलकों में हरकत हुई। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और वेदांश को अपने पास देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ था मुझे और मैं यहाँ तुम्हारे हॉस्पिटल बेड पर? उसकी आवाज़ धीमी और थकी हुई थी। वो उठने की कोशिश करने लगी, मगर वेदांश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। लेटी रहो, तुम्हारा रेस्ट करना ज़रूरी है। अंबिका ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ है मुझे? वेदांश ने हल्की मुस्कान के साथ झुककर उसके होंठों पर एक प्यारा सा किस किया और फुसफुसाया, अंबिका, तुम माँ बनने वाली हो। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। अंबिका की आंखें फैल गईं। माँ? उसने अपने पेट पर हाथ रखा, जैसे उस छोटे से जीवन को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। इसके बारे में बस उसे अभी पता चला और उसे अपने कानों पर भी जैसे विश्वास नहीं हो रहा था।